आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, 2016 का वांग गांगवू पुरस्कार मिला है UTS यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी स्थित प्रोफेसर देवलीना घोष को। देवलीना जी, सबसे पहले तो इस अवार्ड के लिए, इस पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई हो।
थैंक यू, धन्यवाद।
देवलीना, आपको सब लोग जानते हैं कि आप भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों, साहित्य और समाज के ऊपर काफी लिखती आती हैं और काफी वर्षों से आप ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि भारत ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रति लिखने का जो आपका नजरिया है, वो आप कहाँ से और किस दृष्टिकोण से देखती हैं?
देखिए, जब मैं पहले आई थी यहाँ, वो तो बहुत साल अब हो गए, 35 साल तो होगा ही, तब यहाँ भारतीय सब्जेक्ट्स हो रही, टॉपिक्स के ऊपर, मुद्दे के ऊपर बहुत कम रिसर्च हो रहा था। तो जब मैंने PhD खत्म किया, तो वो PhD था बंगाली पॉपुलर लिटरेचर के ऊपर। सो उसके बाद वो काम जब ढूंढ रही थी, तब मुझे ये लगा कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया और इसमें कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ नहीं ला सकूं, तो शायद यहाँ के लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि उस समय पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो संबंध थे वो बहुत ही दुर्बल थे। फिर मैंने काम करने, फिर मैंने जब पढ़ने लगी, तब मुझे ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के में जब पहले पहले विलायत से लोग आए थे, वो 1788 के बाद, तब उनके जो ट्रेड, जो जहाज यहाँ आते थे, वो सब मद्रास या कलकत्ता से आते थे अपने सप्लाईज लेकर। और उस समय, वो 19th century में, उस समय बहुत लोग जो लश्कर थे, जहाज पे काम करते थे, वो लोग भी आते थे, कुछ तो यहाँ रह गए। और बहुत वहाँ तब माइग्रेशन का तो कोई वैसे बैरियर्स तो थी नहीं, तो इसलिए लोग आते थे, आते जाते थे। तो ये जब मुझे पता चला, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने लगी, और तब मुझे ये भी पता चला कि देर आर अ लॉट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया व्हिच हैव एक्चुअली रिमेन्ड अनरिसर्च्ड।
जी देवलीना, जो अभी आपका जो पुरस्कृत शोध पत्र है जिसकी हम बात करें, तो वो सांस्कृतिक और व्यक्तिगत नजरिए पर देखता है बे ऑफ बंगाल और मौजूदा राज्यों के बीच में जो राष्ट्र हैं, जैसे कि बर्मा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल तो भारत का ही हिस्सा है। तो इस लेख के बारे में बताइए कि ये लेख जो अभी पुरस्कृत हुआ है, ये क्या बात करता है?
तो सुनिए, जो हम जब हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बारे में रिसर्च करने लगे, तो ये एक इंडियन ओशन सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन ओशन पर है और भारत तो है ही
जी।
तो हम जो रिसर्च करने लगे वो उपनिवेश के ऊपर, सो जो रिसर्च होती है तो वो शायद इंडिया और ब्रिटेन, यू नो, द मेट्रोपोलन, द कॉलोनी, या ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो हमारा रिसर्च था कि उपनिवेश, दो विलायती उपनिवेश का संपर्क क्या है 19th century में। तो हम ऑस्ट्रेलिया इंडिया का रिसर्च करने लगे। जब करते करते हमें बहुत सारा फैक्ट्स एंड यू नो लिटरेचर मिली बर्मा के बारे में। तो ये एक इंडियन ओशन टॉपिक है, तो मेरा एक ख्याल था कि 1940s में ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया का क्या कनेक्शंस है वो डिकॉलोनाइजिंग पीरियड में, उसके ऊपर रिसर्च करने का। तो वो करते करते ये बर्मा पर बहुत सारा मुझे ये तथ्य मिल गए। तो इसलिए, और मेरा फैमिली, परिवार का भी संपर्क है बर्मा से, मेरे पिताजी वहाँ काम करते थे और मेरा जो प्रिंसिपल था स्कूल में वो भी बर्मा में थी। तो इसलिए ये सब मिला के ये बंद शुरू हुआ।
देवलीना, आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आप बात करती हैं अपने लेख में भी, कि जो राष्ट्र के बॉर्डर्स होते हैं, जो स्टेट बॉर्डर्स हैं, उनसे ज्यादा कल्चरल परसेप्शंस और क्लास मार्कर्स काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगी?
तो जो बर्मा, तो उस समय जब, जिस समय के बारे में मैं लिख रही थी, उस समय तो बर्मा ब्रिटेन, मेट्रोपोलिस और द कॉलोनियल पावर ऑफ ब्रिटेन का ही एक हिस्सा था। तो मेरे रिसर्च में मुझे जो पता लगा कि ये जो डिविशंस अब हम देखते हैं बर्मा और बांग्लादेश और इंडिया में, ये सब डिविशंस उस समय पर बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं थे, और जो जिस चीजों जो इम्पोर्टेंट थी वो थे पर्सनल रिलेशनशिप्स, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स एंड द एबिलिटी टू इमेजिन अ डिफरेंट वर्ल्ड्स। हाँ, तो मैंने जो ये प्रबंध में लिखा है कि जो लोग वहां बर्मा जाते थे वो लोग बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज भी थे, एंटी ब्रिटिश यू नो रेडिकल लोग भी थे, तो वो बर्मा के जेल में सुभाष चंद्र बोस, तिलक, सब लोग they were all imprisoned in Rangoon, in the prisons of Rangoon. So the thing that I found is what was interesting about the travel to and from Burma was an ability for people to actually relieve themselves from all of the various oppressions of India, both sort of colonial oppression and, you know, caste and societal oppression. So that became very clear in the research that I was doing.
जी देवलीना, जैसे आपने बात की कि भारतीय संघर्ष, आजादी के संघर्ष में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रहा रंगून का, उतना ही इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है रंगून का फिल्मों में भारतीय, जहां पर एक बहुत प्रसिद्ध गीत है मेरे पिया गए रंगून। और अगर आप बात करें बंगाली साहित्य की तो उसमें रंगून जो है एक पृष्ठभूमि जो छाई हुई है उसको कितना इंपॉर्टेंस देंगी?
देखिए लिटरेचर में, शरद चंद्र की लिटरेचर में रंगून या बर्मा बहुत बार उल्लेख है, जैसे जो दो नॉवेल्स जो जिसके बारे में मैं लिखी हूँ वो तो श्रीकांतो और पौथिल प्रबीद, शरद चंद्र के जो दो नॉवेल्स, और उसके बाद ये रमनाथ ठाकुर भी एक जो उसका दलिया एक बहुत फेमस छोटी कहानी है, उसमें भी ये बर्मा में, यू नो, इट्स सॉर्ट ऑफ बेस्ड इन बर्मा। और शरद चंद्र भी बर्मा में कुछ दिन काम, और बेसिकली ही लिव्ड देयर एंड ही वर्कड देयर फॉर सम टाइम, टैगोर विजिटेड देयर, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड कनेक्शंस विद बर्मा। आई मीन इफ यू रीड द आर्टिकल यू सी दैट द लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम सर्टेनली फ्रॉम बंगाल टू बर्मा वाज ह्यूज, लाइक इट वाज, यू नो, मैसिव इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल प्रोपोर्शन ऑफ पीपल गोइंग to the proportion of Burmese who were there, which eventually led to the problems in the 1930s and the anti-Indian feeling. But Burma existed for a long time very much in as part of certainly of the Bengali sort of consciousness, not only because of the people who had gone there or worked there, or the revolutionaries who'd run away there, but also because of the great trek from Rangoon back towards British India after the Japanese invaded.
देवलीना, आपने बात की एंटी-इंडिया फीलिंग्स की या एंटी-माइग्रेंट फीलिंग्स की, तो आजकल ऑस्ट्रेलिया में भी ये छाया हुआ है मुद्दा काफी जोर शोर से, और आप काफी वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं, तो पुराना ऑस्ट्रेलिया जब आप ऑस्ट्रेलिया आई थी और आज का ऑस्ट्रेलिया कुछ अंतर देखती हैं?
जी, जब मैं पुरानी ऑस्ट्रेलिया में आई थी देन जो माइग्रेशन था वो बहुत सारे लोग और रेफ्यूजी लोग भी वियतनाम से आए थे, तो उनके विरुद्ध भी ऐसे ही फीलिंग्स थे। और जब मैं फिशल आईवी सिडनी यूनिवर्सिटी में काम पढ़ती थी तो दीवार, तो सारी दीवार पे एशियंस आउट लिखा हुआ, यू नो, ग्राफिटी था। तो अब ये लगता है कि ये द फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड आर डायरेक्टेड मोर टुवर्ड्स मिडल ईस्टर्न रेफ्यूजीज। सो But also I think the other thing is that the migration or the level of migration has risen quite a lot in the last 15 years, last two decades. When I came, the level of migration was much slower. So it is possible that the adjustments are to that level of migration are going to take longer. But there has always been, I mean, since, you know, 1901 onwards, there's always been a feeling in Australia towards migrants from different cultures and different countries, let alone different skin colors. I don't think that's particularly different now. As opposed to before.
Devlina, SBS Hindi mein baat karne ke liye, apna keemti samay dene ke liye bahut bahut dhanyawad.
Thank you. Thank you, Amit.
मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।